आज विशेष दिन है, चार अपीयरेंस, एक डिसअपीयरेंस, नहीं उसमें एक वसंत पंचमी भी है आज, और आज का दिन सरस्वती पूजा भी है। तो आज जो है भागवतम को न पढ़ के हम लोग जो है वैष्णव आचार्यों का जीवन चरित्र पढ़ेंगे, जिससे हमको जो है भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी कि इन लोगों ने जो है भक्ति कैसे करी, इन्होंने अपना जीवन कैसे बिताया। थोड़ी आवाज बढ़ाओ इसको, आवाज आवाज चाहिए। तो सबसे पहले है लिस्ट में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। ये इतने पन्ने हैं कि इनको अगर पढ़ने बैठेंगे तो दोपहर हो जाएगी, आफ्टरनून। रघुनाथ दास गोस्वामी जी, छह गोस्वामियों में से एक। कितने लोग इनके जीवन चरित्र के बारे में जानते हैं, कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान? भजन कुटीर, भजन कहां किया है, कहां किया भजन? रघुनाथ दास गोस्वामी का जो भजन स्थली है, दैट इज राधा कुंड। रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी पढ़ बताता हूं आपको। वैष्णव कुल में उत्पन्न रघुनाथ दास गोस्वामी एक धन संपन्न जमींदार के एकमात्र पुत्र थे। ये फर्स्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि धन संपन्न परिवार में जन्म लेना और उसके बाद छठ गोस्वामियों में एक गोस्वामी की स्थिति प्राप्त करना। संपन्न परिवार वाले आमतौर पर भक्ति पे आते नहीं, बड़ा रेयर, द रेयर सोल जो संपन्न परिवार में होगा और वो भक्ति में उच्च कोटि तक पहुंचेगा, दर्शन करने आ सकता है। संपन्न परिवार वाला क्या कहता है, देखिए एक छोटी सी झलक देता हूं आपको। अरे श्याम कृष्ण प्रभु बैठे हैं, ये अपना गए, प्रभु जी आपने जन्माष्टमी आ रही है, कुछ करना है? हाँ हाँ बताओ क्या करना है। जैसा वो ठाकुर जी की ड्रेस, प्रसादम, हाँ हाँ कर दूंगा, ड्रेस स्पॉन्सर कर देंगे, प्रसादम स्पॉन्सर कर देंगे, कलश कर देंगे, अभिषेक कर लेंगे, सब कर लेंगे, परंतु उत्तर में क्या चाहते हैं कि जब मैं मंदिर में आऊं तो दरवाजे पे मुझे खड़े मिलो मेरा स्वागत करने के लिए। ठीक कह रहा हूं रोज, दरवाजे पे मेरा स्वागत करना, मुझे माला पहनाना और फिर मुझे एस्कॉर्ट करते हुए अंदर ले जाना, प्रायोरिटी पे मुझसे कलश अभिषेक कराना, दर्शन कराना और फिर मुझे वापस गाड़ी तक छोड़ देना। वो कहते हैं मेरे पास धन है पर समय, आई डोंट हैव टाइम। अब यहां जो है बताया जाएगा कि भक्ति के अंदर कितना समय लगाया उन्होंने और कैसे तपस्या करी, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाल्यावस्था में उन्हें हरिदास ठाकुर का संग एवं आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में चैतन्य महाप्रभु से उनकी भेंट हुई तथा कुछ वर्षों के उपरांत नित्यानंद प्रभु की कृपा से उन्होंने एक सुंदर पत्नी तथा एक वैभवशाली परिवार का त्याग कर दिया। अंदर जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से उन्होंने एक सुंदर पत्नी और वैभवशाली परिवार प्राप्त किया, नहीं का त्याग कर दिया, प्राप्त नहीं किया, त्याग कर दिया। सो श्री गौर राय एवं अपने शिक्षा गुरु स्वरूप दामोदर गोस्वामी की अंतरंग सेवा करने के निमित्त जगन्नाथपुरी भाग गए तथा 16 वर्षों तक वहां उन्होंने उनकी सेवा करी। 16 ईयर्स, 16 साल तक उन्होंने सेवा करी है। कैसे करी है, अंतरंग सेवा, बहिरंग सेवा और अंतरंग सेवा दोनों में क्या भेद है? बहिरंग मतलब सुपरफिशियल, बाहर बाहर से ठीक है जी, ठीक है ठीक है, ऊपर ऊपर से खाना खिलवा दिया या चलो स्वामी जी के कुछ चलो थोड़ा काम कर दिया, कह तो कह दिया। अंतरंग सेवा क्या मतलब है? ईच एंड एवरी एक्ट इज टेकन केयर ऑफ। कपड़े धोने हैं वो भी है, नहलाना है तो वो भी है, मालिश करनी है तो वो भी है। प्रभुपाद की मालिश करते थे भक्त लोग, आप पढ़िएगा उनकी लीला कहीं, मतलब आप जो है उनकी छोटी छोटी बात का ख्याल रखते हैं, उसकी सेवा में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो कहीं कोई ये नहीं कि हाँ ये मेरे लायक काम नहीं, मैं तो नहीं करूंगा, ये मेरा काम थोड़ा, मेरा काम तो बस ठीक है, देख लिया हाँ ठीक ठीक बैठ, कुर्सी दे दी, आसन दे दिया, चलो बैठ गए बहुत ठीक है, ओके फाइन। अंतरंग सेवा और 16 साल तक, 16 ईयर्स। अब उसका रिजल्ट क्या है? फल भी तो मिलना चाहिए ना सेवा करने का, भौतिक नहीं आध्यात्मिक। फल क्या मिल रहा है कि गौरांग महाप्रभु ने अपनी निजी गोवर्धन शिला एवं गुंजामाला रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रदान कर दिया। गोवर्धन शिला उनको दे दिया गया। कहां है गोवर्धन शिला? गोकुलानंद। अभी आ गया श्री चैतन्य महाप्रभु के इस जगत से प्रयाण करने के पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए जीवित रहना दुष्कर हो गया, डिफिकल्ट, क्योंकि अब मैं भगवान के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। कृष्ण चले गए हैं तो मेरा सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। अतः वे गोवर्धन पर्वत से कूदकर अपना जीवन समाप्त करने के विचार से वृंदावन चले आए। जगन्नाथपुरी में नहीं कूदे, कूदने के लिए भी एक ऑस्पिशियस जगह चाहिए, ठीक है वहां जाके मैं प्राण त्यागू। श्री सनातन गोस्वामी ने स्नेहपूर्वक उनका अभिनंदन किया। उन्होंने रघुनाथ दास को समझाया बुझाया कि वे जीवित रहकर ब्रजवासी वैष्णवगण को श्रीमन महाप्रभु की पूरी लीलाओं से प्रबुद्ध करें। कि प्रतिदिन 3 घंटे तक राधा कुंड के तट पर श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में संभाषण करते। रघुनाथ दास ने 40 वर्षों तक राधा कुंड के तट पर राधा कृष्ण का भजन किया, 40 ईयर्स एक स्थान पर। मतलब हम कहते हैं मूड खराब हो गया जो घूम के आते हैं, चलो आज वहां और कल वहां, बोर हो गए हैं मतलब बड़ा मन नहीं लग रहा है, चलो मन परिवर्तित करके आते हैं। पर यहां चर्चा हो रही है कि उन्होंने 40 वर्षों तक राधा कुंड के तट पर राधा कृष्ण का भजन किया। उन्होंने शुद्ध भक्ति भाव से एक परिपूर्ण एक कठोर तपस्वी का जीवन व्यतीत किया। रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रदर्शित किया कि राधा कुंड की नित्य निकुंज लीलाओं में राधा गिरधारी के नित्य प्रेम सेवा प्राप्त करने के हेतु किस कोटि के वैराग्य की आवश्यकता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, टीचिंग्स क्या थी कि अगर आप जो है राधा कुंड के ऊपर जो भगवान कृष्ण और राधा जी की नित्य लीला हो रही है निकुंजों में, अगर उसकी आप प्रेम सेवा करना चाहते हो, नित्य प्रेम सेवा में इन्वॉल्व होना चाहते हो राधा गिरधारी की, तो आपको किस लेवल का सरेंडर चाहिए, किस लेवल का वैराग्य चाहिए, वो उन्होंने संभाषण किया, वो उन्होंने जो है डेली लेक्चर्स दिए हैं, बताया है। अगर किसी को डिटेल में जाना हो तो उन्हें वो ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे जिनके अंदर आप किस तरीके से भगवान की प्रेममयी सेवा में लगन लगा सकते हो। उसमें इसका आदर्श उदाहरण समस्त गौड़िया वैष्णवगण को राधा कृष्ण के प्रति अनन्य शुद्ध प्रेम विकसित करने के लिए उत्साहित करता है। कि आपको किस तरीके से राधा कृष्ण का विशुद्ध प्रेम मिल सकता है, इसके लिए आपको जो है थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिलती है। यस आई फॉलो द सेम फुट स्टेप्स, मैं भी उन्हीं पद चिन्हों पर चलूं जिन जो तरीका रघुनाथ दास गोस्वामी ने हमको दिखाया। अब प्रश्न आता है कि वो दैनिक भजन जो करते थे, उस दैनिक भजन के अंदर क्या क्या चीजें शामिल थी, व्हाट वर द processes involved. श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के दैनिक भजन में नित्य कृत्य सम्मिलित थे 64 माला अर्थात 1,00,000 पवित्र नाम का जप करना, अपनी सिद्ध देह में मानसी सेवा करना, गोवर्धन शिला की पूजा अर्चना करना, राधा कुंड में 3 बार स्नान करना, श्री कृष्ण को 1,000 बार दंडवत करना। हमसे एक नहीं होता, कमर दर्द करने लगती है। लगातार टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ 1,000 बार दंडवत जो है रोज भगवान कृष्ण को करने हैं। हम गिनती भूल जाएंगे, 10-12 बार 15 बार करने के बाद गिनती भूल जाएंगे, या दंडवत भूल जाएंगे या गिनती भूल जाएंगे, दोनों में से एक ही काम हुआ। अब एक और शौक आने वाला है, एक और आश्चर्य प्रकट होने वाला है। वे वैष्णवों को रोजाना 2,000 बार दंडवत करते थे, आप समझिएगा, भगवान को 1,000 बार और वैष्णव जो भगवान को प्रिय हैं उनको 2,000 बार, मतलब 3,000 दंडवत रोज करना। साधारण भाषा में कहा जाए तो जिसे दंड बैठक होती है 3,000 लग गई, क्योंकि जब उठना पड़ता है तो बाजुओं पे जोर देना पड़ता है, उसके बिना उठा नहीं जाता। इट्स सो डिफिकल्ट टू मूव। फिर वैष्णवों का आलिंगन करना, उनके गले मिलना, 90 मिनट विश्राम करना, टोटल 24 आवर्स के अंदर 1.5 घंटा विश्राम, 1.5 आवर्स, और कभी कभी तो तनिक भी विश्राम न करना। किंतु ध्यान रहे कि जब भगवान का कोई नित्य पार्षद बाह्य रूप से विश्राम करता है तब भी वह मानसिक रूप से सेवा में संलग्न रहता है, और वह प्रतिदिन 1 दोना अर्थात 100 ग्राम छाछ पी के गुजारा करता है। टोटल डाइट वॉज 100 ग्राम्स ऑफ बटर मिल्क। हम कहते हैं वो 100 ग्राम लस्सी में क्या होने वाला है, तो दाढ़ भी गीली नहीं हुई और लाओ, बट ही हैड ए क्लियर कट कंसेप्ट कि भजन कैसे करना है, किस तरीके से जीवन बिताना है, किस तरह राधा कृष्ण के प्रेम में आकर्षण पैदा करके जितने भी उनके भाषण सुन रहे हैं उनके मन के अंदर राधा कृष्ण के प्रेम का आकर्षण जगाना। 100 ग्राम छाछ, जीवन पर्यंत उन्होंने इंद्र तृप्ति के हेतु कुछ नहीं खाया, जीवन निर्वाह हेतु वे नाम मात्र को भोजन ग्रहण करते थे। जनश्रुति के अनुसार चैतन्य महाप्रभु के तिरोधान के उपरांत रघुनाथ दास केवल फल व दूध ही ग्रहण करते थे। श्री सनातन गोस्वामी पाद के प्रयाण कर जाने के पश्चात वे 1 या 2 दिन में 1 बार 1 दोना छाछ ग्रहण करके ही जीवित रहे, और जब रूप गोस्वामी नित्य लीला में प्रविष्ट हुए तब उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। वे भगवान तथा उनके प्रेमिक सेवकों की विरह ज्वाला में शनै शनै दहक रहे थे और ब्रजवासी उनकी जर्जर दशा देखकर रो पड़ते थे। पीपल यूज टू क्राई, रोते थे कि जो इतनी शुद्ध भक्ति हो रही है इसका अंश मात्र भी हम में आ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। ऐसे ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज को, ऐसे स्ट्रिक्ट कठोर तपस्या को जो है करना आज के युग के अंदर हम लोगों के लिए असंभव है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। रघुनाथ दास गोस्वामी ने 3 ग्रंथों की रचना करी, स्तवावली जिसमें मन शिक्षा, विलाप कुसुमांजलि एवं अन्य पुस्तकें सम्मिलित हैं, मुक्ताचरित तथा दान केली चिंतामणि, श्री ठाकुर भक्ति विनोद ने जैव धर्म में लिखा है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्वयं को श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा में संलग्न करने का गूढ़ मार्ग दर्शाया है। रघुनाथ दास ने लिखा व सिखाया कि वृंदावन में श्रीमती राधा रानी की दिव्य सेवा आध्यात्मिक सिद्धि की पराकाष्ठा है, जिसके वे प्रयोजन आचार्य के नाम से विख्यात थे। अतः वे आचार्य जो राधा कृष्ण प्रेम प्राप्ति का मार्ग दर्शाते हैं। जब हम संबंध अभिधेय और प्रयोजन की चर्चा करते हैं तो संबंध में भगवान से संबंध कैसे स्थापित करना है, हमारा संबंध क्या है, उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, बेसिक नॉलेज। तो संबंध ज्ञान किसने सिखाया हमको, उसका हु टॉट अस। संबंध ज्ञान किसने सिखाया और उसकी ड्यूटीज कौन है वृंदावन में, राधा मदन मोहन। संबंध ज्ञान की ड्यूटीज है राधा मदन मोहन, और ज्ञान किसने दिया, सनातन गोस्वामी। जब आप चतुर चरतामृत पढ़ते हो तो उसके मध्य लीला के अंदर जो 20 से लेकर 22 तक के अध्याय हैं, फुल ज्ञान देते हैं आपको, वेल फिलोसॉफिकल नॉलेज। भजन क्रिया कि भगवान के साथ संबंध कैसे स्थापित करना है, उसके आचार्य कौन है, किसने ज्ञान दिया हमको, तो हो गया संबंध ज्ञान। भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते हैं हम लोग, वही उसे भक्ति कैसे करनी है ये तो बताया है रूप गोस्वामी ने। और डीटीज कौन है, राधा गोविंद देव, जो कि शिफ्ट हो गए जयपुर चले गए। यह चर्चा हो रही है प्रयोजन ज्ञान की, फिलोसॉफिकल नॉलेज, कि हमें संबंध ज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहिए और भजन क्रिया क्यों करनी चाहिए। इस ज्ञान के आचार्य कौन है, रघुनाथ दास गोस्वामी। और इट इज कौन है, राधा गोपीनाथ। उनका हमें जो है ध्यान करना चाहिए। यहां जो है ये चर्चा चल रही है कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्रीमती राधा रानी की परम श्रेष्ठता स्पष्टता स्थापित की। अंतरंग प्रार्थनाओं का एक संघ विलाप कुष्मांजलि में वे कहते हैं कि श्री राधा कृष्ण की सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है। अपनी प्राणेश्वरी राधा रानी के वियोग में निराशा एवं अत्यंत आतुरता का अनुभव करते हुए वे उद्विग्न होकर राधा रानी की सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान कृष्ण को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मार्ग राधा रानी से होकर जाता है, डायरेक्ट प्राप्त नहीं कर सकते। पाथ जो है इट हैज टू बी थ्रू राधा रानी। इसीलिए जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आप टेक्निकली देखिएगा, मंत्र में जो 16 नाम है उनमें कृष्ण कितनी बार आता है, राम कितनी बार आता है और हरे कितनी बार आता है, वैल्यू है ना, उसके बिना गाड़ी नहीं चलने वाली। बिकॉज भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए आपको राधा रानी की सेवा में से ही होके गुजरना पड़ेगा, उसके बिना कोई चांस नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, मेरा जीवन व्यर्थ है यदि मुझे आपकी कृपा प्राप्त ना हुई तो अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, मेरे लिए राधा कुंड एवं वृंदावन वास निरर्थक है। वृंदावन क्या, आपके बिना तो स्वयं कृष्ण भी मेरे लिए अर्थहीन है। राधा जी के लिए कह रहे हैं, हे श्रीमती राधा रानी, आप ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य हैं, कृपया मेरे प्रति करुणाशील हों। कृपा नहीं मांगी, दया नहीं मांगी, क्या मांगा है, क्यों, वाई, आप मेरे प्रति करुणाशील हो, प्रचुर तुखानल में दग्ध चित होकर अतिशय रोदन के साथ मैं आपके पाद पद्म अपने हृदय में धारण करता हूं और आपकी प्रेमा भक्ति की भिक्षा मांगता हूं। कदाचित ये विलाप पुष्पांजलि आपको स्वल्प मात्र तुष्टि पहुंचाए। उन्होंने करुणा क्यों मांगी, वाई, एक एग्जाम्पल देता हूं। आज के कलयुग या आज से कुछ हजार साल पहले की बात। एक साधारण झोपड़ी में रहने वाला निम्न जाति का व्यक्ति किसी तरीके से राजा की निगाह में चढ़ गया, जैसा उसने काम किया कि राजा उससे बड़ा प्रसन्न हो गया। अब उसके गरीब के मन में यह भाव था कि मेरा जो झोपड़ी जहां मैं रहता हूं उसके आसपास का विकास कार्य होना चाहिए, रास्ते ठीक से बने, लोगों की आवाजाही ठीक से हो, वगैरह वगैरह। आई वॉन्टेड इम्प्रूवमेंट। तो राजा ने उसने कहा कि मैं तुम्हारे कार्य से बड़ा प्रसन्न हूं, तो मुझसे वरदान मांगो। क्या मांगते हो? उसने कहा, राजन मैं चाहता हूं कि आप मेरी कुटिया पवित्र करें, अपने चरण वहां रखें। तो उसके जो संगी साथी थे उन्होंने कहा, बेवकूफ है तू, तूने तो राजा से मांगना था हमारी कॉलोनी अच्छी हो जाए, हमारा ये अच्छा हो जाए, हमारा वो अच्छा हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, तूने क्या मांगा? राजा तुम्हारी झोपड़ी में आए और चला जाए। कहता ऐसा है कि राजा आएगा तो लाभ लश्कर साथ लाएगा, राजा आएगा तो झोपड़ी क्या पूरे एरिया का कायाकल्प हो जाएगा, क्योंकि गंदी जगह तो वो आ नहीं सकता। तो ही हैज टू मेक इम्प्रूवमेंट्स, पर ऑटोमेटिकली राजा के आने पे वहां पर जो इम्प्रूवमेंट्स हुई कि वो कॉलोनी जो है एकदम A1 ए क्लास बन गई। यहां जो है रघुनाथ दास गोस्वामी करुणा मांग रहे हैं कि करुणा आएगी तो दया ऑटोमेटिकली आएगी, दया आएगी तो उसका हाईएस्ट प्लेटफॉर्म कृपा ऑटोमेटिकली होगी। व्हाई शुड आई आस्क फॉर सो सच थिंग्स? अगर राजा रानी का हृदय पिघल जाता है, उनके मन में करुणा व्याप्त हो जाती है, तो फिर मुझे किसी किस्म की कोई कमी नहीं। श्री वृंदावन धाम में श्री रघुनाथ दास अति मंजरी के रूप में श्री राधा रानी की सेवा में संलग्न है। उनकी समाधियां राधा कोण एवं 64 समाधि पीठ में। रघुनंदन ठाकुर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी को मालूम है इनकी कथा, इन्होंने क्या कमाल किया, बट स्पेशल थिंग ही डिड। भोग तुम भी लगाते हो, भोग आप भी लगाते हो, इनकी क्वालिटी क्या थी कि इन्होंने उनको खाने के लिए मजबूर कर दिया। हम लोग थाली लगाते हैं, थाली वैसी वापस ले लेते हैं, चलो हो गया, भगवान ने खा लिया होगा, चलो ले जाओ। क्या बोला? तो यहां कहते हैं, चिकित्सीय कार्य के लिए कहीं बुलाए जाने के कारण एक बार मुकुंददास अपने छोटे पुत्र रघुनंदन को कुल देवता गोपीनाथ का राजभोग अर्पण करने के लिए कहा। ये जो गोपीनाथ जी की कथा है, इसके अंदर जो यहां पे चल रहा है, तीन ब्रदर थे, मुकुंददास, माधवदास और नरहरि सरकार, जो कि श्रीखंड गांव के अंदर रहते थे। रघुनंदन जो है मुकुंददास के पुत्र, उन्होंने जो है कुल देवता गोपीनाथ को राजभोग अर्पण करने के लिए कहा। रघुनंदन ने सब कुछ यथा समय सावधानी पूर्वक अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक तैयार किया और भोग अर्पण करते समय उन्हें अपने पिता की आज्ञा का स्मरण हुआ। निश्चित कर लेना कि गोपीनाथ जी भोजन ग्रहण कर लें, निश्चित कर लेना वर्ड है, दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। अब उन्हें यह समझ में आया कि भाई ये खाना जो है थाली खाली होनी चाहिए, ये भरी नहीं रहनी चाहिए, ये बच्चे के दिमाग में बात बैठ गई। घंटी बजाते हुए सरल बालक ने गोपीनाथ अष्ट विग्रह से कहा, भोजन ग्रहण कर लो, भोजन ग्रहण कर लो, भोजन ग्रहण कर लो, भोजन ग्रहण कर लो। जब रघुनंदन ने देखा कि विग्रह की थाली में भोग सामग्री अछूती पड़ी है, टच भी नहीं जैसे थी वैसे की वैसे रखी है, तो रोने लग गए, डर गए, भयभीत हो गए कि अर्च विग्रह को खिला पाने में उनकी असमर्थता के कारण उनके पिता क्रोधित हो जाएंगे। गोपीनाथ उस बालक की उत्कट भक्ति के समक्ष हट नहीं कर पाए, अतः भगवान ने थाली में से सब कुछ खा लिया और कुछ भी शेष नहीं छोड़ा, काली साफ एकदम। लौटने पर मुकुंददास ने गोपीनाथ का वहां प्रसाद मांगा तो रघुनंदन ने कहा गोपीनाथ ने तो सब कुछ खा लिया। विस्मित होकर मुकुंददास ने अपने पुत्र को पुनः भोग अर्पण करने के लिए कहा। जब रघुनंदन गोपीनाथ को लड्डू अर्पण कर रहे थे तब मुकुंद अचंभित होकर पूर्ण दृश्य छिपकर देख रहे थे। भगवान ने केवल आधा लड्डू ही लिया, मुकुंद समझ गए कि गोपीनाथ ने आधा लड्डू इसलिए लिया है क्योंकि मध्यान्ह भोग ग्रहण करने के उपरांत उन्हें भूख नहीं होगी। अपने पुत्र की शुद्ध भक्ति का बोध होने पर दिव्य भावनाओं से मुकुंद का कंठ अवरुद्ध हो गया, उन्होंने रघुनंदन को आलिंगन बद्ध कर दिया। उत्तर काल में जगन्नाथपुरी में गौरांग महाप्रभु ने प्रीतिपूर्वक मुकुंददास से प्रश्न किया कि पिता कौन है और पुत्र कौन है। मुकुंददास ने उत्तर दिया रघुनंदन निश्चित ही मेरा पिता है क्योंकि उसने ही मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान की है, उसने ही मुझे शुद्ध कृष्ण भावना दिखलाई है। श्री कृष्ण लीला में रघुनंदन कंदर्व मंजरी एवं प्रद्युमन चतुर्व्यूह के हैं, उनकी समाधि भी 64 समाधि पीठ में है। रघुनंदन ठाकुर जो है उन्होंने जो भक्ति में भगवान को कैसे प्रत्यक्ष खिला दिया जाता है ये हमको शो किया है। तो श्री उद्धव दास जो है अपने गीत के अंदर जो है रघुनंदन को बताते हैं कि वो मदन क्यूपिड अर्थात कामदेव से अलग नहीं है। कृष्ण लीला के अंदर कंदर्व मंजरी थे, द्वारका लीला में श्री कृष्ण के पुत्र थे कंदर्व, और इनके पुत्र हैं कनाई ठाकुर जिनके जो है डिसेंडेंट्स इनके जो परिवार वाले जो है आज भी श्रीखंड में रहते हैं। 1432 शताब्दी के अंदर जो है प्रकट हुए। नेक्स्ट कौन है जी? पुंडरीक विद्यारथी। माधवेन्द्रपुरी के शिष्य पुंडरीक विद्यारिधि श्री गदाधर पंडित के गुरु थे तथा स्वरूप दामोदर के एक अंतरंग मित्र। एक बार जगन्नाथपुरी में पुंडरीक विद्यानिधि स्वरूप दामोदर से एक लंबी अवधि के उपरांत मिले। आनंदपूर्ण मैत्री भाव में पुंडरीक एवं स्वरूप एक दूसरे के चरण रेणु चाह रहे थे। पैर छूना, चरणों की रज लेना, मैं आपकी और आप मेरी, दोनों में झगड़ा हो रहा है कि कौन जीतता है, कौन चरण रज लेता है। जब वे अपने अपने पांव बचाते हुए एक दूसरे के चरण स्पर्श करने का प्रयास कर रहे थे उनके बीच में छीना झपटी होने लगी, क्योंकि दोनों ही बलवंत थे कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सका। श्री गौरांग महाप्रभु ने उनकी इस क्रीड़ा का आनंद उठाया और तथा सब जन खिलखिलाकर हंस पड़े। पुंडरीक विद्यानिधि के अन्य नाम भी हैं, श्री विद्यानिधि, आचार्य निधि, भक्तियानिधि, प्रेमानिधि, ये सारे नाम जो है चैतन्य महाप्रभु ने उनको दिए। उनके नाम का श्रवण मात्र करने से समस्त जगत निर्मल हो जाता है। श्री गौर का कहना है कि प्रेम निधि की शुद्ध भक्ति कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यधिक क्रंदन करने पर विवश कर देती है और वे पुकार उठते बाप पिताजी पुंडरीक, पुंडरीक मेरे पिता हैं, मेरे परम प्रिय मित्र, मुझे आपके दर्शन कब प्राप्त होंगे। वृंदावन लीला में पुंडरीक विद्यानिधि वृषभानु महाराज हैं श्री राधा के पिताश्री। श्री कृष्ण प्रेम सुधा निधि में निरंतर लगातार गोते लगाते हुए पुंडरीक में प्राय अश्रु, रोमांच, मूर्छा आदि सात्विक विकार प्रदर्शित होते थे। जो भी पुंडरीक विद्यानिधि एवं गदाधर पंडित की भेंट के अवरोक्त व्याख्यान का श्रवण अथवा पाठ करेगा उसे भगवत प्रेम निधि प्राप्त होगी, ऐसा चैतन्य भागवत में लिखा। नवद्वीप में प्रथम आगमन करने पर पुंडरीक विद्यानिधि ने स्वयं को एक सांसारिक विषय के रूप में प्रस्तुत किया, भक्त के रूप में नहीं, कर्मी के रूप में। मुकुंद के अतिरिक्त किसी को यह ज्ञात नहीं था कि पुंडरीक विद्यानिधि एक शुद्ध वैष्णव थे। आज मैं आपका परिचय एक अद्वितीय वैष्णव से कराने जा रहा हूं, मुकुंद ने कहा जब मैं गदाधर पंडित की भेंट पुंडरीक विद्यानिधि से कराने ले गई। मैं आपकी भेंट एक शुद्ध वैष्णव से करा रहा हूं। अब क्या देखते हैं गदाधर पंडित? पुंडरीक एक ऐसी भव्य पीतल की शैया पर टेक लगाए विराजमान थे जो लाल कौशेय चादरों से आच्छादित थी। रेशमी तकिए थे, ऊपर चंदोवा की 3 तहें थी, भुज विस्तार पर एक रत्न जड़ित पानदान था, उसमें सुगंधित पान व सुपारी रखे थे। पलंग के समीप खड़े 2 चमचमाते पीतल के पीकदान ऐसे प्रतीत होते थे मानो मूक प्रहरी खड़े हो। दर्पण में अपने पान से अभिरंजित ओष्ठों का प्रतिबिंब देखकर गुंडरीक ठहाका लगाकर हंस पड़े। 2 सेवक मोर पंखे से पंखा करके उन्हें शीतलता प्रदान करते थे। राजा होता है, अब बंगाल के राजा कभी देखिएगा कैसे बजरे में घुमा करते थे, कैसे उनकी जो है मूवमेंट रहती थी, एग्जैक्टली सेम चीज यहां दिखाई जा रही। यह कोई वैष्णव है या विलासिता में निमग्न कोई राजकुमार? गदाधर पंडित अचंभित थे। अब उनके मन में डाउट हो गया, कहां ले आए मुझे, किससे मिलवा रहे हैं? मुझे कह रहे हैं कि आपको शुद्ध वैष्णव से मिलवाता हूं, एक शुद्ध भक्त से मिलवाता हूं, एक अद्वितीय वैष्णव से मिलवाता हूं, और ले आए यहां पे देखो क्या नक्शे हैं इनके। गदाधर के मन में पुंडरी की आध्यात्मिक स्थिति के संबंध में संदेह उत्पन्न हुआ। उनके मन को भांपते हुए मुकुंद ने पुंडरीक विद्यानिधि के अति उन्नत दिव्य स्वरूप को प्रकाशित करने का निश्चय किया। मुकुंद ने श्रीमद भागवत के 10वें स्कंद के 6 अध्याय के 35वें श्लोक का सस्वर वाचन किया। ओह, भला मैं उनसे अधिक दयालु अन्य की शरण कैसे ग्रहण करूंगा जिन्होंने उस आसुरी पूतना को माता का पद प्रदान किया। यद्यपि वे बालकृष्ण का वध करने हेतु आई थी, उसने अपने स्तन से चूसे जाने के लिए घातक विष तैयार किया। इस श्लोक का श्रवण करते ही पुंडरीक विद्यानिधि पूर्णतः परिवर्तित हो गए। उनके नेत्रों से अश्रुओं की सुर सरिता बह निकली, उनका देह श्वेत बिंदुओं से आच्छादित हो गया, पसीने की बूंदें आ गई उसके ऊपर, आंखों से आंसुओं की धारा निकल गई और विपुल पुलकावली से व्याप्त हो गई। उन्होंने अपने बेल बूटों से अलंकृत रेशमी कुर्ता फाड़ डाला, पागलों की भांति अपने पांव पटकने लगे, भूमि पर लौटते हुए विलाप करने लगे। भगवान अपार कृपा भंडार हैं, किंतु उन्होंने मुझे अपनी कृपा से वंचित रखा है। उनके वस्त्र पीतल की शैया और शय चादरें, दर्पण पीकदान, समस्त राजसी साज सामान चितड़े चितड़े टुकड़े टुकड़े हो गया। 10 जनों ने प्रयास किया किंतु वे पुंडरीक के भावन मात के आवेग को रोक नहीं पाए। श्री कृष्ण के प्रति पुंडरीक विद्यानिधि के शुद्ध प्रेम के अभिव्यक्तियां कुछ समय तक एक दूसरे के संग स्पर्धा करती रहीं। अंतर्द्वत्वा उनकी दिव्य भावनाएं शिखर पर पहुंच गईं और वे बाह्य चेतना खो बैठे। नाउ ही वॉज अनकॉन्शियस, बेहोश हो गए। दिव्य अनुभूतियों के इस चमत्कारिक प्रदर्शन को निरखने के पश्चात गदाधर पंडित को अपने अपराध का बोध हुआ। अरे बाबा रे, मैं क्या सोच रहा था, क्या निकले, इतनी गलती करी कि पुंडरीक विद्यानिधि एक भौतिकतावादी भक्त समझना एक त्रुटिपूर्ण धारणा थी। अपनी भूल को सुधारने के लिए वे पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा लेना चाहते थे। 6 घंटे के उपरांत श्री पुंडरीक को पुनः चेतना लाभ हुआ। यहां पर अगर किसी को ऐसे सिम्टम आ जाए, बोले बेहोश हो गया है तो अस्पताल ले चलो, इसको कुछ तकलीफ होगी, इसको तुरंत अस्पताल शिफ्ट करो। मैंने संडे को एक उत्तम नगर में लेक्चर दिया था, वहां एक माता जी मेरे पास आई तो मुझसे कहने लगी, प्रभु जी आपने लेक्चर दिया है तो मेरा पति जो है उसको मैं आपसे मिलवाना चाहती हूं, कि आप डॉक्टर हैं, आप जो है थोड़ा सा उनके बारे में कुछ ख्याल रखें। बोले कि वो ना सारा दिन जो है बैठे हुए, नहीं वो पेशेंट जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पेशेंट है स्किजोफ्रीनिया, डॉक्टरों की लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं पैरानॉइड सेंसेशंस, मतलब इस लोक से दूसरे लोक की बातें करते हैं, तो मतलब आसपास की बातें न करके एक अदृश्य बातें करते हैं। तो वो जो है उसको हर वक्त राधा कृष्ण की बातें करते रहे, हर समय जब मिले तभी राधा कृष्ण की बातें करते रहे। इतनी बातें करते हैं कि घर वालों ने घबरा के डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने जो है स्किजोफ्रीनिया लेवल करके दवाइयां देनी शुरू कर। अभी तो वो बातें ही कर रहा था तो उसको डॉक्टरों पे ले गए दवा लेने के लिए, कहीं बेहोश हो गया तो आप तो उसको अस्पताल में भर्ती करा दें, आईसीयू में। चल भैया, ये मंदिर में कीर्तन करते बेहोश हो गया था, इसको जो है 8 जो लक्षण होते हैं वो सारे के सारे प्रकट हो गए, इसे उठा के अस्पताल में ले चलो, बेहोश हो गया, बेहोश हो गया, बेहोश हो गया। परंतु यहां जब भक्ति में आते हैं तो 6 घंटे के उपरांत श्री पुंडरीक को पुनः चेतना लाभ हुआ 6 आवर्स। 6 घंटे को बेहोश होकर दिखाए तो पूरे आसपास में जिसे कहते हैं मतलब आफत मच जाएगी और बड़ा मतलब ढिंढोरा पिट जाएगा, अरे फलाना बेहोश हो गया, अस्पताल में ही हो गया था, वो हो गया था। यहां समझने की बात है कि भक्त जो है जब भक्ति के अंदर पराकाष्ठा में आ जाता है, हाईएस्ट लेवल पे, हाईएस्ट लिमिट में आ जाता है, तब उसकी स्थिति क्या होती है। अब वे शांत तथा स्थिरचित दिखे, उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक गदाधर पंडित को दीक्षा दी। ब्रज लीला में पुंडरीक विद्यानिधि श्रीमती राधा रानी के पिता हैं, उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। विष्णु प्रिया देवी दासी जो है किसका प्रकट्य है, किसका प्रकट्य है? भगवान की 3 विभिन्न अंतरंगा शक्तियां, अंतरंगा शक्ति के भी 3 भेद हैं। हम चर्चा करते हैं बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति, अंतरंगा शक्ति। यहां तरंगा शक्ति के भी 3 भेद हैं। ये है श्री भू एवं लीला। भू शक्ति ने गौर लीला में श्रीमती विष्णु प्रिया के रूप में प्रकट होकर श्री चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन में सहायता की। श्री कृष्ण लीला में सत्य भामा के पिता राजा सत्रजित, गौरांग लीला में विष्णु प्रिया देवी के पिता सनातन विश्व ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। श्रीमती विष्णु प्रिया देवी समस्त सद्गुणों से ओतप्रोत थी, उनकी रूप संपदा लक्ष्मी देवी को भी पराजित करती थी। वे अपने माता पिता के प्रति सेवानिष्ठ थी एवं कर्तव्य परायणता पूर्वक शास्त्रीय आदेशों का पालन करती थी। वे नियमित रूप से तुलसी देवी की पूजा करती थी और अनेक व्रतों का पालन करती थी, जैसे गंगा में 3 बार स्नान करना। डिफिकल्ट होता है, आसान नहीं, क्योंकि अपने घर से ट्रेवल करके जाना, बरसात भी है, सर्दी भी है और गर्मी भी है, हर प्रकार का मौसम है, और वहां जाके स्नान करके फिर घर में वापस आके सेवा करनी। जब भी विष्णु प्रिया गंगा तट पर शची माता से मिलती तो वे विमत्ता पूर्व उनके चरणों में प्रणाम करती। शची माता प्राय सोचती कि सुंदर साधी विष्णु प्रिया उनके पुत्र निमाई के लिए आदर्श वधु सिद्ध होगी। जब महाप्रभु के वियोग में उनकी प्रथम पत्नी लक्ष्मी प्रिया देवी का देहावसान हो गया तब निमाई पंडित ने श्रीमती विष्णु प्रिया देवी से विवाह किया। चैतन्य मंगल एवं चैतन्य भागवत में इस अति मंगल विवाहोत्सव का विस्तृत वर्णन दिया गया। एक वित्तवान जमींदार बुद्धिमंत खान ने दिव्य युगल विष्णु प्रिया एवं श्री निमाई पंडित के भव्य राशि विवाहोत्सव का संपूर्ण व्यय वहन किया, क्योंकि उसके पिता ने कहा मेरे पास तो शादी का खर्चा ही नहीं, आई डोंट हैव एनी मनी, आई डोंट हैव एनी एसेट्स। आप तो माता जी कह रही है पुत्री के विवाह मेरे पुत्र से कर दो, वो शादी करेगा मैं पहले ही नहीं मेरे पास। तो यहां पर जो है चर्चा आती है कि बुद्धिमंत खान ने कहा कि आई विल बियर ऑल द एक्सपेंसेस। नवद्वीप एवं निकटवर्ती गांवों के समस्त निवासी विवाहोत्सव में पधारे। समारोह के समय सब जन दिव्य युगल को निर्निमेश निहार रहे थे, मानो वे विष्णु प्रिया एवं निमाई पंडित की निरुपम रूप मता को अपने भीतर समेट लेना चाहते। वैष्णव वृंद ने श्री हरि का गुणगान किया। ब्राह्मणों ने महाप्रभु के चारों ओर घेरा बनाकर वेद मंत्रों का उच्चारण किया। चतुर्दिक हर्ष की हिलोरें उमड़ने लगी, जो उसमें डूबे नहीं वे आनंद में मात्र गोते लगाते रहे। विवाह उत्सव के अतिरिक्त वृंदावन दास ठाकुर ने विष्णु प्रिया की लीलाओं का विशेष वर्णन नहीं किया है। चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर अन्यत्र अनुक्त लीलाओं का वर्णन करते हैं। वे गौरांग महाप्रभु द्वारा संन्यास लिए जाने की पूर्व रात्रि को उनके एवं विष्णु प्रिया के मध्य हुए अत्यंत मरुस्पर्शी अंतिम वार्तालाप का वर्णन करते हैं। भावरुद्ध कंठ से विष्णु प्रिया ने कहा, हे प्राणनाथ, कृपा कर मुझे बताएं कि क्या ये किंवदंती सत्य है कि आप संन्यास ग्रहण कर लेंगे और मेरा त्याग कर देंगे? यदि मैं आपका संग हो बैठूंगी तो मैं विष खाकर अपने प्राणों का अंत कर दूंगी। श्री गौर राय ने मृदुल एवं संवेदनशील वाली में उत्तर दिया, विष्णु प्रिया तुम मुझे अपने प्राणों संप्रिय, प्राणों की तरह ही मुझे प्रिय हो, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मैं कहने जा रहा हूं कृपया सुनो, क्योंकि इससे तुम्हारा हित होगा। इस जगत में एकमात्र सत्य भगवान तथा वैष्णव है, शेष सब कुछ माया है। माता पिता संतान स्त्री व पुरुष के मध्य संबंध ये सब माइक है। श्री कृष्ण ही सबके स्वामी अर्थात वास्तविक पति है। शोक मत करो ना ही चिंता करो, तुम्हारा नाम विष्णु प्रिया है, अतः विष्णु प्रिया के वास्तविक अभिप्राय को सार्थक करो और सदैव अपने हृदय में श्री कृष्ण का ध्यान करो। धनंतर गौर सुंदर ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया जिससे विष्णु प्रिया को उनका परम पद समझने में सहायता मिली। उस रूप के दर्शन से विष्णु प्रिया के विषाद तथा वेदना का निवारण हुआ, उन्हें आनंद का अनुभव हुआ। इस दर्शन तथा महाप्रभु की शिक्षा से उनकी दुविधा दूर हो गई, किंतु उन्होंने अपने मन में भगवान को अपने पति रूप में बनाए रखा। सशक्ते हुए चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरकर वे बोली, मैं आपसे याचना करती हूं कि मेरा सविनय निवेदन स्वीकार करें। आप मेरे प्रिय प्राणेश्वर हैं, आप ही मेरी एकमात्र संपदा हैं, आपके तथा आपकी सेवा के अतिरिक्त मेरे पास और कुछ भी नहीं है। औरांग महाप्रभु ने अपने नयनों से विष्णु प्रिया का आलिंगन किया, उन्होंने उन्हें शब्दों द्वारा कृपादान दिया। मैं इधर उधर भ्रमण करूंगा किंतु मैं कहीं भी जाऊं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। तो बड़े सुंदर शब्द इस्तेमाल किए हैं कि आलिंगन नयनों से हो रहा है, मतलब समथिंग वेरी ट्रांसेंडेंटल, साधारण नहीं है ये बात समझना, नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। भगवान गौर सुंदर की परम स्वतंत्र प्रकृति को समझते हुए विष्णु प्रिया ने कहा, हे नाथ आप वही करें जो आपको प्रसन्नता प्रदान करे, कोई भी आपके दिव्य ध्येय में बाधा न बने। श्री निमाई पंडित के नवदीप से प्रस्थान कर जाने के पश्चात विष्णु प्रिया ने अत्यंत कठोर एवं नैष्ठिक जीवन शैली अपना ली। वे अमावस्या की पूर्व रात्रि के चंद्राकार की भांति कृशकाय हो गई। कठिन साधना करते हुए हरे कृष्ण जप की एक माला करने पर अन्न का एक दाना अलग रखती। सायंकाल में विष्णु प्रिया अन्न के दानों को पकाती और महाप्रभु के अपने निजी विग्रह को अर्पण करती तथा तदंतर उनका प्रसाद ग्रहण करती। अद्य काल में विष्णु प्रिया द्वारा पूजित श्री गौरांग महाप्रभु का ये आकर्षक अर्च विग्रह धामेश्वर महाप्रभु के नाम से प्रसिद्ध है तथा नवदीप नगर में विराजमान है। श्रीमन महाप्रभु नियमित पूजन स्वीकार करते हैं तथा अशेष कृपा प्रदान करते हैं। तो कितने लोगों ने विष्णु प्रिया माता जी का घर देखा हुआ, क्या मिलता है जी वहां? और चरण पादुका रखते हैं आपके सर पे चैतन्य महाप्रभु की? कितने लोगों ने रखवाई है? तो वहां जाने का मतलब जिसे कहते हैं दर्शन हो रहे हैं और ये फोकट में प्राप्त हो रहा है एडिशनल, कि चैतन्य महाप्रभु की चरण पादुका जो है आपके सर के ऊपर रखी जाती है, आपको उसका आशीर्वाद प्राप्त होता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सन 1638 में 9 बज गए प्रभु जी, बढ़ाए आगे 10 मिनट कोई दिक्कत तो नहीं। सन 1638 में आविर्भूत श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हरिवल्लभ दास श्री नरोत्तम दास ठाकुर की शिष्य परंपरा में हैं। श्री विश्वनाथ ने श्री राधा रमन चक्रवर्ती से दीक्षा ग्रहण करी। यद्यपि विश्वनाथ विवाहित थे, वे पारिवारिक जीवन के प्रति उदासीन रहते थे और शीघ्र ही उन्होंने गृह त्याग कर दिया। जब वृंदावन धाम चले आए उन्होंने राधा कुंड के तट पर श्री कृष्ण का भजन किया। उनकी शुद्ध भक्ति विद्वता तथा राधा गोकुलानंद की अंतरंग विलास लीलाओं की यथार्थ अनुभूति के कारण उन्हें वैष्णव मुकुटमणि कहा जाता है। गौड़ी अधिकारी जनों का कहना है कि श्री रूप गोस्वामी वाग देवावतार अर्थात वाणी रूपी देवता के अवतार हैं और श्री गौड़ी आचार्यों विशेषकर उनके प्रत्यक्ष शिष्यों का मानना है कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्री रूप गोस्वामी के अवतार री इंकारनेशन प्रकट हुए हैं। प्रथम परम सत्य की प्रभूत अनुभूतियों की दृष्टि से समस्त गौड़िया वैष्णव आचार्यों में केवल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ही श्री रूप गोस्वामी के सदृश हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती का नाम ही उनकी स्थिति को विवक्षित करता है। विश्वनाथ का अर्थ है जो विश्वनाथ श्री कृष्ण विश्व के स्वामी की भक्ति रूप मणि को प्रकाशित करता है, और चक्रवर्ती का अर्थ है जो सब जन को शुद्ध श्री कृष्ण भक्त चक्र मंडल में अवस्थित करता है। यार जो भगवान कृष्ण का जो है भक्तों का मंडल है उसमें आपको स्थित करते हैं अगर आप इनको फॉलो करते हैं। सिर्फ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कहना है गौड़िया वैष्णववाद के ऐतिहासिक विकास के मध्य काल में सन 1600-1700 में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रमुख संरक्षक प्रतिपालक तथा आचार्य थे। गौड़िया वैष्णववाद का विकास श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रारंभ हुआ, परवर्ती काल में श्री ठाकुर भक्ति विनोद ने इसे पुनर्जागृत किया। सिर्फ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसका विस्तार किया और इस्कान के संस्थापकाचार्य श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने विश्वभर में इसका प्रचार प्रसार किया। वृंदावन में अपने प्रवास के समय विश्वनाथ ने राधा गोकुलानंद एवं गिरिराज के अर्च विग्रहों का पूजन किया। उनकी गोवर्धन शिला सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा पूजी गई, तदंतर रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज, श्री मुकुंद दास, श्रीमती कृष्ण प्रिया ठकुरानी, तदुपरांत विश्वनाथ चक्रवर्ती ने उसका पूजन अर्चन किया। अधुना ये गिरिराज गोवर्धन विग्रह वृंदावन के राधा गोकुलानंद मंदिर में विराजमान है। कितने लोगों ने दर्शन किए इसके, आना चाहिए आपको, मस्ट गो। राधा गोकुलानंद टेम्पल जो है देखा है नहीं देखा, कहाँ है, कहाँ है? राधा रमन से जब आप जो है चीर घाट की तरफ यमुना जी की तरफ जाते हो तो राधा गोकुलानंद पड़ता है, जब रिवर्स जाते हो निधि वन के पीछे तो राधा गोपीनाथ पड़ता है। तीन टेम्पल जो है एक ही लाइन में है, वहां पर एक ही रो में है। कुछ आचार्य दावा करते हैं कि गोवर्धन शिला इस्कान के कृष्ण बलराम मंदिर के निकट रमन रेती में भागवत निवास में शुभान्वित है, परंतु हमने ना देखा है ना हमें पता है। वहीं जाते हैं, राधा गोकुलानंद में दर्शन करते हैं और आनंद लेते हैं। श्री कृष्ण ने विश्वनाथ को स्वप्न आदेश दिया कि वे गोस्वामी ग्रंथों की टीकाओं की रचना करें। वे अविलंब ही विपुल भक्ति साहित्य का सृजन करने लगे। वे जब लिखने बैठते मेघ उनका आवरण कवच बनकर धूप से उनकी रक्षा करते, बादल रक्षा करते थे धूप से। एक बार उस क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा हुई जहां पर विश्वनाथ भागवत और अपनी टीकाएं लिख रहे थे, किंतु ऐसा चमत्कार हुआ कि विश्वनाथ अथवा उनकी भागवत हस्तलिपि पर एक बूंद भी नहीं गिरी। मंत्रार्थ दीपिका काम गायत्री की व्याख्या का संकलन करते समय विश्वनाथ किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। अपने अथक अनुसंधान से उन्होंने पाया कि काम गायत्री में 25 अक्षर हैं, ये प्रमाणित नहीं कर पा रहे थे कि कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत में ये क्यों लिखा है कि काम गायत्री में 24.5 अक्षर हैं। वे अक्षर श्री कृष्ण की अपराकृत देह पर विद्यमान 24.5 चंद्र समूह के अनुरूप है। श्रीमती राधिका ने एक स्वप्न में विश्वनाथ की शंका का निवारण करते हुए कहा, हे विश्वनाथ अब और खेद मत करो, कृष्णदास कविराज ने जो कुछ लिखा है परम सत्य है। वे मेरी अंतरंग सखी मंजरी भी हैं, उन्हें मेरे अंतरतम भावों के विषय में सब विदित है। काम गायत्री मेरी उपासना का मंत्र है, निसंदेह मैं इस मंत्र के अक्षरों द्वारा प्रकाशित होती हूँ। मेरे अनुग्रह के बिना कोई भी इस मंत्र का रहस्य समझने में समर्थ नहीं है। कितने लोग ब्राह्मण दीक्षित हैं और कितने लोग दीक्षित हैं, तो बाकी लोग दीक्षित क्यों नहीं है? जब तक दीक्षा नहीं लोगे तब तक उसके बाद ब्राह्मण दीक्षा नहीं लोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे भाई। वर्णागम भास्वत नामक ग्रंथ में अर्धाक्षर का निरूपण किया गया है, उसे देखकर कृष्णदास कविराज ने काम गायत्री के स्वरूप का निर्णय किया है। ये वर्ण के बाद जब भी वी वर्ण आता है जैसे काम देवा या विद्माहे में है तभी अर्धाक्षर माना जाता है। ये श्री कृष्ण के ललाट पर आता है, चूंकि उनका ललाट अर्धचंद्र के आभा मंडल के आकार का है। मंत्र के शेष सब वर्ण पूर्ण अक्षर हैं, अतः पूर्णेन्दु हैं। अब उठो इस ग्रंथ का अध्ययन करो तथा पूर्वकार्थ इस प्रमाण को संकलित करो। ये राधा रानी कह रही। रक्षण उठकर विश्वनाथ हा राधे हा राधे हा राधे कहकर विलाप करने लगे। राधा रानी के दर्शन ने विश्वनाथ के लेखन में एक दिव्य शक्ति का संचार कर दिया। उन्हें अनुभूति हुई कि श्रीमती राधा रानी की एक अंतरंग सखी मंजरी के रूप में स्वीकार किया गया है या उनकी रचनाओं का बोध झलकता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने राधा गिरधारी की शुद्ध भक्ति पर 40 से भी अधिक ग्रंथों का प्रणयन किया। उन्होंने श्रीमद भागवत सारार्थ दर्शनी, भगवद गीता सारार्थ वर्षिणी, सिल ड्रोप गोस्वामी, कवि कर्णपुरा, नरोत्तम दास ठाकुर की कृतियों पर सुमधुर एवं भावात्मक रसिक टीकाओं की रचना की। उनके द्वारा विरचित ग्रंथों में श्री कृष्ण भावनामृत, माधुर्य कादम्बनी, ब्रज रीति चिंतामणि, चमत्कार चंद्रिका, स्वप्न विलासामृत, संकल्प कल्पद्रुम तथा अनेक अनंत ग्रंथ सम्मिलित हैं। इसमें अपने यहां पर इस स्थान में माधुर्य कादम्बनी अवेलेबल है। कितने लोगों ने पढ़ी सारा दर्शनी भी है, माधुर्य कादम्बनी भी है। तो ब्यूटीफुल बुक, छोटी सी किताब है, माधुर्य कादम्बनी, तो ब्यूटीफुल बुक। ये आपको जो है भक्ति बताती है, किस तरह से भक्ति करनी चाहिए, किस तरह का भगवान का प्रेम प्राप्त किया जाए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती वाद का जीवन तथा शिक्षाएं संपूर्ण गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को सुख प्रेरणा एवं दिव्य प्रज्ञा प्रदान करती हैं। हम हार्दिक प्रार्थना करते हैं कि जन्म जन्मांतर के उपरांत हम एक दिन उनके पद कमलों की धूलि का एक कण बनने का अधिकार प्राप्त कर सकें। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती वाद की जय। श्री कृष्ण लीला में वे विनोद वल्लरी मंजरी के रूप में राधिका जी की सेवा में रत हैं। उनकी समाधि राधा गोकुलानंद मंदिर के प्रांगण में विराजमान है। अब लास्ट में 2 मिनट के अंदर विल डिस्कस अबाउट वसंत पंचमी, जिसको हर व्यक्ति सेलिब्रेट करता है। तो वसंत पंचमी जो है क्या है, उत्तरी भारत के अंदर जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो उसका पहला दिन कहलाता है। अमावस्या के बाद ये 5वां दिन है, जब शुक्ल पक्ष आता है। अमावस्या अभी गई ना 23 तारीख को, 23rd को अमावस्या, 23rd को अमावस्या, तो उसके बाद जो है 5वां दिन आता है। इस दिन जो है भगवान कृष्ण को फूल पत्र, जो नवीन नवीन शाखाएं निकलती हैं, वो सब अर्पित की जाती हैं। वृंदावन के अंदर एक खास महत्व है इसका कि इस दिन लोग जो है अपने शरीर के ऊपर भगवान कृष्ण को पेंट करते हैं। Following in the footsteps of Brajvasis of Vrindavana, one should paint designs on his Krishna's body and perform a special artrika for him. Bhagavan Krishna ke upar bhi painting ki jati hai aur apne par bhi painting ki jati hai, so that we surrender to him. Is din jo hai peele phool Bhagavan ko arpit karne chahiye. Well, North India mein ek rivaaj hai, is din peele chawal banaye jate hain. ऑरेंज कलर जो होता है, लड्डू का जो रंग होता है, वो चावलों में डाला जाता है। चावल कैसे बनाते हैं, मीठे मीठे पीले चावल जो है वसंत पंचमी को बनाए जाते हैं, भगवान को ऑफर किए जाते हैं। एक वसंत राग है, वो इस दिन जो है प्ले करना चाहिए। और डीटीज को इस दिन जो है पीले वस्त्र, क्या वस्त्र है आज, डीटीज को भी पीले वस्त्र या पीले और हरे, हरा रंग भी पीले के निकट आता, दोनों को मिक्स करके जो है रंग पहनाए जाते हैं। वृंदावन में, मायापुर में, जगन्नाथपुरी में, उडुपी में, जहां जहां कृष्णा टेम्पल्स हैं, गुरुवायूर में, वहां पर जो है स्त्रियां जो है पीले वस्त्र पहन के भगवान के समक्ष नृत्य करती हैं। इसी दिन जो है गर्भाधान संस्कार की एक व्याख्या की गई है। उस दिन जो है स्त्रियों को गर्भाधान संस्कार करके संतान प्राप्ति की कामना की जाती है। गर्भाधान संस्कार परिवार में या गायों के लिए भी किया जाता है, इसी दिन किया जाता है। शादियां इस दिन करी जा सकती हैं, वेडिंग्स परफॉर्म करी जा सकती हैं, नए कार्य आरंभ किए जाते हैं और इस दिन जो है प्रैक्टिकली लोग कहते हैं कि नया जीवन आरंभ हो रहा है, क्योंकि तो पीले पीले सरसों के फूलों का खिलना जो है इन दिनों में होता है। कभी आप दिल्ली से बाहर निकल के देखिएगा तो आपको जो लगता है कि धरती के ऊपर पीली चादर ओढ़ी हुई है, उसमें सब जगह सरसों के आपको फूल मिले। इसलिए जो है इस दिन इसको जो है पीला वस्त्रों का मतलब फेस्टिवल कहा जाता है। बंगाल के अंदर जो है इस दिन सरस्वती पूजा की जाती है, वहां पर जो है सरस्वती की मूर्ति की स्थापना की जाती है, उनका अर्च विग्रह स्थापित किया जाता है, उसके बाद उसको रंगोली लगाई जाती है। परिवार के लोग जो है अर्ली मॉर्निंग नदी के अंदर स्नान करते हैं, उसके बाद पीले वस्त्रों को पहनते हैं, फिर वो सरस्वती देवी के आसपास एकत्र होते हैं और पुजारी जो है फिर सरस्वती की पूजा कराता है। तो वसंत पंचमी का महत्व जो है यही है कि हम लोगों को बेसिकली अब आप देखेंगे कि आज के बाद ना मौसम खुलता चला जाएगा, सर्दी समाप्त होती चली जाएगी। मकर संक्रांति से 13 तारीख ये जो जाता है, माघ संक्रांति जिसे बोलते हैं, इस दिन से जो है सर्दी कम होनी शुरू हो जाती है, सूर्य उत्तरायण में चला जाता है। अब उत्तरायण में जाने के बाद अब वसंत पंचमी में और खुल जाएगा, अब आपको दिन ब दिन सर्दी कम होती जाएगी। हालांकि हम देखते हैं कि आजकल जो इकोलॉजिकली हम लोगों ने डिस्टर्बेंस की है उसमें ठंड ज्यादा पड़ रही है, बर्फें गिर रही हैं, पर नॉर्मली ऐसा जो है जो हमारा जो पौराणिक स्थिति है उसके अंदर ये एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर आस्ता जो है हम वो बदलते जाते हैं। जब इस सरस्वती पूजा करी जाती है, घर में पूजा करी जाती है, तो सबसे छोटी लड़की जो घर में होती है वो सबके माथे के ऊपर पीला टीका लगाती है, शी इज गिवन दिस ऑनर, और पीले लड्डुओं का वितरण किया जाता है, पीले चावलों का वितरण किया जाता है। सरस्वती पूजा इस दिन होती है क्योंकि वो किसकी देवी है, देवीम सरस्वतीम, हमें ज्ञान प्रदान करती है, जो ज्ञान की देवी है। हमें उनसे जो है आज के दिन में इतनी रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप हमें कृष्ण का ज्ञान प्रदान करें, कृष्ण भक्ति का ज्ञान प्रदान करें, हमें भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जो जो ज्ञान की आवश्यकता है वो हमारे हृदय में प्रस्फुटित हो जाए, हमारा मन उधर लगे, हमारा ध्यान उधर लगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की।